आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 19। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहम् वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य देव ने यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ लिखा है। उस पर क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी जो सहजानंद जी उनका प्रवचन हुए है और उस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 88 पर हम आगे 88 ये नया पैराग्राफ है ना, धर्म का अंतस्वरूप, वहां से पढ़ेंगे। संसार में बसते हुए इस जीव का कर्तव्य यह है कि वह धर्म करे। धर्म नाम किसका है? धर्म को तो सभी कहते हैं। प्रत्येक मानव यह मानता है कि धर्म से सुख होता है, पर धर्म की व्याख्या सबकी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग है। हमारे एक रिलेटिव डॉक्टर, वो तो कहते थे अरे हम पेशेंट की सेवा करते ही हमारा मोक्ष है, उसमें मोक्ष मानते। कोई हमारे मित्र है वो तो कहते कि हम संगीत सुनते हुए हमारा मोक्ष है, सुनते तो मोक्ष की भी व्याख्या अलग अलग है हर एक की, और धर्म की भी अलग अलग। कोई कहते सबको हम मदद करते वही हमारा धर्म है, यही कह रहे हैं यहाँ पर। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ जाता है उस समय गरीब लोग निकलते हैं मुट्ठी मुट्ठी अन्न मांगने के लिए और कहते हैं धर्म करो धर्म करो। पेज नंबर 88 पर हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे थे कि धर्म से सुख होगा, परंतु सभी जीवों की धर्म संबंधी मान्यता जुदी जुदी है। यह ग्रहण के दिन वो मांगते ना दे दान छूटे गिरा, क्योंकि तुमको धर्म हो जाएगा। उनकी दृष्टि में वह एक छटांक अन्न मिल जाना भी जाना ही धर्म है। कोई धर्म सांस श्रृंगार में मानते हैं, कोई धर्म ऊपरी सजावट में मानते हैं, कोई धर्म दूसरे जीवों की किसी पीड़ा में मदद करने में मानते हैं। धर्म की व्याख्या सबकी अलग अलग है। और किसी दृष्टि से शोभा बेन आपके यहाँ से कुछ आवाज आ रही है। हाँ ठीक, हाँ ठीक। धर्म की व्याख्या सबकी अलग अलग है और किसी दृष्टि से किसी पर की सहायता करना आदि व्यवहार धर्म का अंग माना जा सकता है, किंतु परमार्थ ने सच में देखो तो धर्म क्या है? जिस धर्म के मिलने से इस जीव का नियम से संकट टल जाए वह धर्म है। हम सबको जानते देखते तो रहे, पर किसी भी वस्तु के संबंध में राग द्वेष का पक्ष उत्पन्न न होने दे, ऐसे अपने को समता की तराजू से तुला हुआ बनाए रहे, ऐसी स्थिति का नाम धर्म है। इस धर्म के पालने से ही हम आपका उत्थान है। और उनको वो भी देना चाहिए। दुर्लभ मानव जन्म का लाभ। यह मनुष्य भव दुर्लभ बताया गया है। अनेक कुयोनियों में भ्रमण कर करके किसी सुयोग से यह मनुष्य जन्म पाया है। अब अपने आत्मा की कुछ शुद्ध करे, दूसरे जीवों के अधीन होकर दूसरों के प्रेम में बंधकर अपनी बर्बादी मत करे। जो लोग दुनिया में सबको अच्छा समझते हैं उसकी कहते हैं बर्बादी हो रही है, राग में अधिक बर्बादी हो रही है। गृहस्थ धर्म पाया है तो बनाए व्यवस्था, पर अंतरंग से ममता का परिणाम न लावे। बनाए व्यवस्था ने जो कुछ आपको कुटुंब के प्रति जो आपकी विशेष जिम्मेदारियां है उसको निभाए तो सही, परंतु अंतरंग में उसके ममता का परिणाम न रखे। दूसरे जीवों के अधीन होकर अपनी बर्बादी मत करो, दूसरे जीवों में के प्रेम में बनकर अपनी बर्बादी मत करो, दोनों के लिए वो बर्बादी बराबर है ना, कोमा नहीं कोमा। यानी दोनों के लिए वही एप्लीकेबल है, वो तो बर्बादी यानी दूसरों के अधीन होकर अपनी बर्बादी मत करो, ऐसा भी उसका अर्थ लेगा, और दूसरों के प्रेम में बनकर अपनी बर्बादी मत करो। इस तरह से अधीन होकर प्रेम करना ऐसी बात नहीं लेना, उसने उसके लिए वो कॉमन नहीं लाया, दो अलग अलग बातें बताना चाहते हैं।
उसने आगे भी एक कॉमन दिया कि आप अपने आत्मा की कुछ करो,
हाँ
ये उसने पॉजिटिव बताया,
और ऐसा मत करे, शुद्ध करे, अपनी शुद्ध करे और अपनी बर्बादी मत करे, ये दो स्टेटमेंट बताए। या तो आप पहले बार उसमें अर्धविराम लगा लो और बाद में एक कॉमा लगा लो, वो तो लगा ही लिया उन्होंने, अर्थ समझने से मतलब है अपने को। गृहस्थ धर्म पाया है तो बनाए व्यवस्था, यानी वो अपने जो गृहस्थ जो कोई जिम्मेदारी है वो भले निभाओ, परंतु अंतरंग से ममता का परिणाम न लावे। यानी ये मेरा 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 वाली बात जो है, और वो सचमुच मेरा कहना बात अलग है, और बस यही मानते रहता है। अरे पक्षी की तरह पंख पसार कर किसी दिन उड़ गया, फिर रहा क्या तेरा यहाँ, यानी तुम मर गया तो यहाँ क्या रहेगा, किस चीज के लिए इतना श्रम कर रहा है, इतना निदान बना रहा है, इतने मंसूबे बना रहा है। मंसूबा समझते ना, मनोरथ जिसको हम कहेंगे। धर्म एक प्रधान कर्तव्य है, क्यों शेष चिल्लीपन किया जा रहा कि दुनिया मुझे जान पाए मान पाए। अरे किन्हीं लोगों के जान जाने से कहीं मेरा उत्थान न हो जाएगा। ये दुनिया के मायामयी जन अर्थात इस देह के बंधन में बंधे हुए लोग, जन्म मरण के संकट सहने वाले लोग यदि मुझे जान गए कि यह अच्छा है, यह बहुत पढ़ा लिखा है, संपन्न है, कुछ भी कह डाले तो ये शब्द मेरा कौन सा भला करने वाले हैं। अरे तू तो इस जगत में असहाय है, असहाय न अपने ही सहाय वाला है, दूसरे के कोई सहाय की तुझे जरूरत ही नहीं है, तेरा सहाय तेरा ही सदाचार है, तेरा ही सत्य श्रद्धान है, तेरा ही सम्यक ज्ञान है, तेरी ही करतूत तेरी सहायता करेगी। यानी ये तो अपने को ये संयोगों से तोलता है और उसी में कुछ न खटपट करना चाहता है, तो अपने आत्मा को पहचान कर उसी की श्रद्धा करना, उसी में लीनता, इसी से सारा अपना कल्याण होने वाला है। अन्य बाहरी कितनी भी चीज़ें, अब ये चीज़ें तो कितने पता नहीं कितने हजारों करोड़ों वर्षों पूर्व किए हुए अभी उन कर्मों का फल अभी मिल रहा है, अभी उसमें तेरे हेरा फेरी करने से कुछ नहीं होने वाला है। इनसे अपने को हटा ले नहीं, इनसे अपना जुदापन जान ले, ये महत्व की बात है। इसमें तो अपनी कुछ इच्छा से तो कुछ फेरा फेरी होती नहीं है, यानी ये तो क्या करता है, मात्र विकल्प विकल्प कल्पना कल्पना कल्पना, उसी में इतना बेचैन हो जाता है, कर तो कुछ नहीं सकता है वो, यानी बाहर की कंडीशन तो कोई बदलती नहीं है, और मात्र ये ऐसा करूँ कि वैसा करूँ ये सोचता रहता है। धर्म का स्वरूप व धर्म पालन का लाभ। धर्म का अर्थ है तू अपना परिणाम इतना निर्मल बना कि तू जगत का साक्षी रह सके। ये तो ज्ञाता दृष्टा के नाम पर जानता रहता है और फिर उसमें राग वेश तो उसके होते रहते हैं। ज्ञाता दृष्टा रह सके, रंच भी राग और ममता की श्रद्धा न जम सके, ये बात उसको ज्ञाता दृष्टा कहेंगे। गृहस्थ राग करता है पर यह मेरा है, इस प्रकार का ममत्व परिणाम रंच भी नहीं रखता है। ज्ञानी की बात है, गृहस्थ की, धर्मी गृहस्थ ऐसा होना चाहिए क्या? यदि श्रद्धा में ममता रंच भी आ जाए, परमाणु मात्र भी यदि अंत श्रद्धा में राग आ जाए, तो उसे अज्ञान बताया है। ये ज्ञानी गृहस्थ या धर्मी गृहस्थ की बात है ना, ऊपर जो बताया था ना तीसरी लाइन में, धर्मी कहो ज्ञानी कहो, उसके राग भले है अभी गृहस्थ है ना, गृहस्थ है तो अभी पूरे तो उसके अनंतानुबंधी तो गए अपन, बाकी तो है सिंह कसाई टोकरी, राग है परंतु वो ममत्व भाव वाली जो मेरा मेरा वाली बात मिथ्या तो नहीं वहां पर। और अंतश्रद्धा में राग आ जाए तो उसे अज्ञान बताया, वह शांति के पथ पर अपना कदम नहीं रख सकता। कोई जीव सुखी हो तो भी धर्म करे, दुखी हो तो भी धर्म करे। क्या कहना चाहते हैं? शक्कर कब मीठे लगेगी, रोते रोते खाएंगे क्या हंसते हंसते खाएंगे? मीठे लगने वाली है। धर्म सुखी जीवों का सुख बढ़ाएगा, धर्म दुखी जीवों का दुख दूर करेगा। जैसे लोक व्यवहार में धन कमाना अच्छा कहते हैं, धनार्जन से यानी धन कमाने से जिसके ऋण नहीं है उसके धन बढ़ेगा, और जिसके ऋण है कर्ज है वह अपने उस कर्ज को चुका देगा। पर कमाना तो सभी अवस्थाओं में व्यवहारी जन योग्य मानते हैं। कर्जदार हो वह भी कमाए, न कर्जदार हो वह भी कमाए। कमाना धन की वृद्धि का कारण है। ये जैसे लौकिक का उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे व्यवहार में लोग यह मानते हैं ऐसी ही धर्म की बात समझिए। कोई जीव सुखी हो धर्म करे तो उसका सुख बढ़ेगा, कोई जीव दुखी हो धर्म करे तो उसका दुख दूर होगा। सभी अवस्थाओं में धर्म का साधन करना कल्याणकारी है। धर्म का शब्दार्थ व धर्मोपासना का अनुरोध। भैया एक बार फिर से दृष्टि इस ओर लाए कि धर्म करना कहते किसे है। धर्म शब्द में ही खुद अर्थ समाया हुआ है। धर्म नाम है पदार्थ आत्मनि यम स्वभावम धत्ते सधर्म, यानी पदार्थ अपने आप में, आगे लिखा ये, अपने आप में जिस स्वभाव को रखता है उस स्वभाव का नाम धर्म है, या धारयति इति धर्म ऐसा भी आता है, वो स्वभाव धारण कर रखा है वो उसका धर्म है, वस्तु स्वभाव धर्म। लोग कहते भी हैं जिसका जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार काम करे। लोग कहा करते हैं यह तो अपने धर्म पर डटा है, मेरे आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा रहना, जाननहार रहना, जाननहार यानी जानने वाला। जानन का काम किसी भी जीव में एक क्षण भी बंद नहीं होता। क्यों नहीं बंद होता मनीषा बहन, आपको मालूम है? जानने का काम ये कहते हैं हर समय चल रहा है, एक भी समय बंद नहीं होता। हाँ ऐसा क्यों कहा कुछ उसके? हाँ हाँ चालू, क्यों चालू रहता है हर समय, क्यों जानना जानना चल रहा है? कौन सा?
जानने का स्वभाव ही है ना,
हर समय क्यों जान रहा है? द्रव्यत्व शक्ति, वो निरंतर परिणमन करना, या ये भी प्रत्येक द्रव्य का गुण है। प्रत्येक द्रव्य का सामान्य गुण आपने सुने कि नहीं सुने? तो उसमें आया था ना द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण का कार्य क्या है? निरंतर परिणमन करना। तो निरंतर परिणमन करने का द्रव्य का स्वभाव है, द्रव्य का गुण है, यानी द्रव्य का प्रत्येक गुण भी निरंतर परिणमन कर रहा है। तो जानने का कार्य भी निरंतर चल रहा है, अकेले जानने का ही नहीं, अनंत गुणों के प्रत्येक का कार्य निरंतर चल रहा है। तो यहाँ वो उसका प्रकट लक्षण है ना, और वो हमारे ख्याल में आता है, इसलिए जानने की बात यहाँ उठाई है। ये हम जान रहे कि नहीं जान रहे, ये हर जीव को समझता है, इसलिए जानने की मुख्यता से बात बता रहे। जो प्रमुख गुण क्यों प्रमुख कहा, वो हर जीव को अब ख्याल में आता है कि मैं जान रहा हूँ, ये उसको दूसरे को पूछना नहीं पड़ता है, इसलिए उसकी बात उठाई। क्या कहते हैं? जानन का काम किसी भी जीव में एक क्षण भी बंद नहीं होता है। क्रोध करने का काम बंद हो जाएगा, कहाँ तक कोई घमंड बना बगराएगा, घमंड बगराएगा
घमंड दिखलाएगा।
हाँ, यानी घमंड कितने दिन से दिखाएगा दूसरों को। मायाचार भी विश्रांत हो जाएगा, यानी चारों ही कषाय की बात कर रहे हैं, वो तो मंद पड़ेंगे, शांति हो जाएगी। लोभ कषाय भी उपशांत हो जाएगा, कोई कषाय स्थिर नहीं रह पाती, और कषाय कभी नष्ट भी हो सकेगी, क्योंकि हमने देखे अरिहंत सिद्ध। किंतु ज्ञान सभी अवस्थाओं में रहेगा, क्रोध करे, मान करे, मायाचार करे, लोभ करे, तब भी ज्ञान साथ है। कषाय रहित हो जाए तब भी ज्ञान साथ है। ये कौन सा ज्ञान है उसकी बात मत करो, जानना 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 चल रहा है। हम अभी वो सुबह मार्गणा का विषय चल रहा है ना, हम कहते कोई वेद वाले जीव है, कोई अवेद यानी अपगत वेद वाले, कोई कषाय वाले है, कोई निकषाय है, योग सहित है, योग रहित है। ऐसा कोई ज्ञान सहित और ज्ञान रहित वाला जीव है क्या? नहीं है। यही कहना चाहते, जानना 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 चल ही रहेगा। ये बाकी विभाव जो है वो तो रुक जाएंगे एक दिन, परंतु जानना कभी नहीं रुकेगा। क्रोध करे, मान करे, मायाचार करे, लोभ करे, तब भी ज्ञान साथ है। जानना तो चल ही रहा है ना, वो तो ऊपर से आई हुई उपाधि है, पर जानना तो मूल बेसिक तो चल ही रहा है। ऐसा नहीं कि ज्ञान मिटकर क्रोध हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। जानना 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 उसके साथ भी चल ही रहा है ना, वो तो अपना कायमी स्वभाव तो चल ही रहा है, और ऊपर से आए ये विवाह तो उसके साथ साथ वो क्रोध मान माए लोग कुछ ना कुछ वो पलट पलट कर हो रहे हैं, पर जानना तो कांस्टेंट है ही वहां पर। तो लोग तब भी ज्ञान साथ है, कषाय रहित हो जाए तब भी ज्ञान साथ है, यानी जानना तो चल ही रहा है, अरिहंत तो सिद्धों में भी चल रहा है। तो यह ज्ञान आत्म स्वभाव है, और केवल मैंने मात्र जाननहार रहना, यही धर्म का पालन है। आत्मा का धर्म है जानना, और मात्र जानते रहना यही धर्म है उसका। अब इसमें क्या क्या माना अपने को, मैं क्रोध करता हूँ, मैं परद्रव्य का कुछ करता है, मैं दुनियाओं के मदद करता हूँ, सबका उपकार करता हूँ, जो नहीं करता है उसको भी मान लिया अपना, तो उसने धर्म का पालन नहीं किया। अतः ज्ञानार्जन करके, आत्म मनन करके, ये जो ज्ञानार्जन है ना, आप कहेंगे ज्ञान तो जान ही रहे ना, और क्या जान, ज्ञान का अर्जन करना, या आगम से ज्ञान, सही ज्ञान, तत्व ज्ञान पढ़ना, ये ज्ञानार्जन करना। आत्म मनन करके, अपना परिचय पा करके, क्योंकि वो जो बातें अपनी आत्मा के अनुभव की बताई है ज्ञानियों ने, उन्होंने स्वयं अनुभव कर दिया है और अनुभव का तरीका बताया है, तो आत्म मनन करके, उस संबंधी चिंतन करके, अपना परिचय पा करके, यानी आत्मा का अनुभव करके, एक ज्ञाता दृष्टा रहने रूप धर्म का यत्न करे, करने लायक एक यही बात है और कुछ नहीं है। अपना दुख हम आप सबकी अपनी ज्ञान कला से दूर हो सकेगा, उद्दंडता से तो दुख ही होगा। ये 19 नंबर का श्लोक, धर्माराम तरुणाम फलानि सर्वेन्द्रियार्थ सौख्यानि संरक्षतां सतस्तान उच्चिनु यैस्तैरुपायैस्त्वम्। सुख मूल की रक्षा का आदेश। संसार के जितने भी सुख है वे सुख भी किसी सीमा तक किए गए धर्म वृक्ष के फल है। ये सुख अभीष्ट है तो उनके कारणभूत धर्म वृक्ष की रक्षा कर। यहाँ क्या है, धर्माराम तरुणाम फलानि सर्वेन्द्रियार्थ सौख्यानि, यानी जो इंद्रियों के जो लौकिक जो सुख माने गए हैं वो धर्माराम तरु के फल बताए हैं। तो कहते धर्म वृक्ष की रक्षा कर, वो विवेक पूर्वक सुख फल को भोग। ये सुख छह रूपों में विभक्त है। कोई सुख स्पर्शन इंद्रिय जन्य है, कोई रसना इंद्रिय जन्य, कोई घ्राण इंद्रिय जन्य, कोई चक्षु इंद्रिय जन्य और कोई कर्ण इंद्रिय जन्य सुख होते हैं। कुछ सुख मन के विषय होते हैं। इन छह प्रकार के सुखों में किसी भी सुख में कोई आसक्त हो जाए तो वह पापी है, दुरात्मा है। धर्म की जड़ को खोद कर फेंक रहा है। संस्कृत में पढ़ते हैं हम, पहली लाइन तो समझ में आई ना, यानी धर्म रूपी वृक्ष के ये सारे फल है क्या, सर्व इंद्रियार्थ सौख्य हो गए। संरक्ष, उनके संरक्षण करो, किसका, धर्म तरु का। स्थान, मुझे उनको संरक्षण करो। ततः स्थान उच्चिनु यही तही उपाय स्वम, स्थान उच्चिनु तही उपाय ही तम, इन उपायों के द्वारा ही तेरी रक्षा होगी। वो तो आगे की बात बताएंगे। ये बात आई, आगे आएगी अन्य पृष्ठ पर, वो धर्म वृक्ष का रक्षण करना वगैरह वगैरह। और उसका उपाय क्या है वो भी बताएंगे। अभी आगे पढ़ेंगे, अभी एक एक इंद्रिय जो इंद्रियजन्य जो सुख है उसमें आसक्ति का जो परिणाम है उसकी बात बताएं। बहुत बार हमने देखे, अलग अलग उदाहरण देखे, एक एक इंद्रियों में जो आसक्त है उसकी क्या दुर्वस्था होती है वो बताते हैं। और ये तो मानो ऐसा है कि पांचों इंद्रियों के सुखों के पीछे पागल की तरह दौड़ लगा बैठा है। स्पर्शन विषय सुखाशक्ति का परिणाम, सुख में आसक्त होना, लोलुपी होना उसकी बात है। स्पर्शन इंद्रिय के सुख में ठंड, गर्मी, कोमल आदि स्पर्श भी सम्मिलित है। और सबसे निकृष्ट स्त्री काम विषयक वासना के सुख भी निहित है। जो पुरुष स्पर्शन इंद्रिय के विषय सुख में आसक्त रहते हैं वे अपने ब्रह्म स्वरूप का घात करते हैं, प्रभु से विद्रोह करते, अपने स्वयं के प्रभु से विद्रोह होता है। वह प्रभु न वर्तमान में सुख से चैन से रह सकता है, न परलोक में चैन से रह सकेगा। समस्त इंद्रिय विषयों में सबसे कठिन विषय काम वेदना को बताया। इस काम विषय में बुद्धि नष्ट हो जाती है। कामी पुरुष को कितना ही समझाया जाए पर काम वेदना की एक ऐसी व्यथा है कि वह पतित विचारों को छोड़ नहीं सकता है। यद्यपि यह सुख भी पूर्वकृत कुछ धर्म पालन से बंधे पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त होता है, लेकिन वर्तमान में सुख का मूल कारण जो धर्म है, उस धर्म का ही कोई घात करता हो तो उसका अर्थ यह है कि भविष्य काल में वह इस सुख से वंचित रहेगा। पूर्व में कुछ उसने पुण्य कमाया होगा, शुभ भाव को भी धर्म कहते हैं, ये तो लोग यानी साधारण शब्द है ना, वो यानी सम्यक तो प्राप्त किया होगा, ऐसा हर एक के बारे में नहीं कह सकते, किसी ने लेके छोड़ा भी होगा, परंतु ये तो आम जनरल बात जब हो रही है। हाँ, आपका क्या प्रश्न है शोभा? देखो, पाप के उदय में वहां का पर्याय मिली है उन जीवों को, अभी जो उदय चल रहा है उनका, पूर्व के पाप का उदय चल रहा है, अब वर्तमान में जो कर रहे हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी वो कम होगी उनकी, समझ। वहाँ पर भी ज्यादा पाप करके जैसे धीरे जो एक सूक्ष्म एकेंद्रीय में चला जावे, एकेंद्रीय में चला जाए तो पाप से ही गया वो कहेंगे, परंतु वही जो पंचेंद्रीय में आए तो कहेंगे हम पुण्य से आया है, परंतु उनके योग्य उनके संकलेश परिणाम होंगे, उनकी साथ हम पंचेंद्रीय के साथ तुलना नहीं करेंगे, वो भी और पाप करके और नीचे की पर्याय में जा सकते हैं, परंतु उनकी स्थिति इनका प्रश्न ऐसा है, उन जीवों के पापों में कुछ फर्क है क्या? द्विंद्रिय जीव पाप करते हैं, पंचेंद्रिय पाप करते हैं, पंचेंद्रिय पाप करेंगे तो उसका उत्कृष्ट कितना बन सकते हैं, वो तो मिथ्या तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का, और द्विंद्रिय करेगा तो कितना, 25 कोड़ा कोड़ी, 25 सागर का, कोड़ा कोड़ी भी नहीं, 25 सागर का, उस हिसाब से वो अनुभव भी कम होगा वहाँ पर, लेकिन ये जीव तो और एक सागर से भी नीचे करेंगे, वैसा देखा जाए उसके साथ कंपेयर करेंगे तो कहेंगे ऐसा, उनके लिए वही उतना ही है सब, मैक्सिमम मिनिमम एक केंद्रियों की अपेक्षा वो करेंगे विचार, तो उनका ही वही उत्कृष्ट है, उसमें ही उनका उत्कृष्ट जघन्य जो कुछ होगा, उसके साथ हम पंचेंद्रिय की तुलना नहीं कर सकते, पंचेंद्रिय के योग्य अपने परिणाम अलग है, वो मिनिमम भी पाप करेंगे कोई मिथ्या दृष्टि तो भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर का करेंगे, और वो मैक्सिमम भी करेंगे तो एक सागर का बंद हो रहा है, हम उसकी कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, वो पंचेंद्रिय के परिणाम पंचेंद्रिय के योग्य उनके जो रेंज है वो जुदी है और उन जीवों की जुदी है, ऐसा भी कहते हैं निगोद वाला जीव मरकर निगोद में जाता है, इतनी लंबी स्थिति भी नहीं बांध रहे तो जाता है तेने और बहुत लंबे काल तक रहता है, और उसको कहेंगे भाव कलंक की प्रचुरता से, तो उनकी भाव कलंक ज्यादा बताए हैं, तो उस हिसाब से उन्हीं के रेंज में उनके कैसे परिणाम है उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं, उनके आपस में कर सकते हैं। सुखार्थी का विवेक, हाँ, जैसे कोई विवेकी बागवान है, वह पेड़ों की बड़ी रक्षा करता है, उन पेड़ों को अनेक उपायों से हरा भरा रखता है, और उनमें जो फल प्रकट होते हैं उन फलों को भी एकदम तोड़कर नहीं खाता है, एक एक करके उन फलों को तोड़कर खाया करता है, जिससे ये वृक्ष खूब फल देते रहे और उन फलों का आनंद भी बहुत काल तक मिलता रहे। ये तो दृष्टांत हो गया। कोई पुरुष फलों के लोभ में आकर पेड़ों को जड़ से उखाड़ दे तो भले ही वर्तमान समय में वह कुछ फल खा ले, पर आगामी काल में वह फलों से वंचित रहेगा। यो ही ये संसार के सुख धर्मरूपी बाग वृक्ष के फल है। कोई पुरुष इस सुख में आसक्त होकर धर्म की जड़ ही काट दे, धर्म वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दे, तो भले ही कुबुद्धिवश वर्तमान में कुछ सुख का भोग कर ले, किंतु भविष्य में उन सुखों के भोग के योग्य भी वह न रहेगा। मरकर एकेंद्रिय हो गए, पेड़ बन गए, इंद्रिय आदि कीड़े मकोड़े हो गए, अब उनका जीवन कौन सा विकासमय जीवन है? भैया ये समझ में आई ना बात? यहाँ पाप करके वर्तमान सुख के पीछे लगकर एकेंद्रिय आदि पर्याय में उत्पन्न हो जाता है। यह मानव जीवन विकास प्राप्ति के लिए मिला है, इसे पाकर अपने विकास का अवसर नहीं खो देना है। यह मन हस्ती की तरह उद्दंड है, जब तक किसी देव शास्त्र गुरु की आन में नहीं चलते हैं, तब तक इसकी उद्दंडता नहीं समाप्त कर सकते हैं, तब तक ये जीव अपना उत्थान नहीं कर सकते हैं। उनके आन में चलने ने उनके उपदेश के अनुसार उस मार्ग पर चलना। रसना विषय सुखा शक्ति का परिणाम उद्दंडता है, जो होंगे ना वो उद्दाम उद्धट स्वच्छंद हस्ती यानी हाथी। रसना विषय सुखा शक्ति का परिणाम, रसना इंद्रिय से प्रकट होने वाले सुख, रसों और उनके मिलाप से उत्पन्न विविध रस के स्वाद के सुख है। खट्टा मीठा कड़वा चरपरा कशाला इत्यादि रसों में जो आसक्त होकर गिरता है, वह धर्म वृक्ष को जड़ से उखाड़ता है। उसमें गिरता है ना, उसमें आसक्त रहता है। कोई मनुष्य खट्टे का लोभी है, उसे खटाई का रस ही अधिक पसंद होता है। चाहे उस रस के सेवन से अनेक बीमारियां हो जाए और अनेक उपद्रव खड़े हो, फिर भी जो जिस रस का लोभी है वह उसकी बान नहीं छोड़ता है। कोई मीठे का लोलुपी है, मीठा विशेष खाने से दांत के मसूड़े भी कमजोर हो जाते, दांतों में कीड़े भी पड़ जाए, पेट में भी कीड़े पड़ जाए, लेकिन उस मिष्ट के लोभ में आकर यह रस का लोभी होता है। करेले कड़ुए हुआ करते हैं, मेथी कड़ुए होती है, कोई चीज़ें बड़ी कड़ुए होती है, पर उनको खाने की भी बहुत से लोगों की रुचि जगती है। कोई चरपरी कशायले आदि पदार्थों के खाने का लोभी है। इन रसों के सेवन से कुछ सुख तो होता है, और ऐसा सुख साधन मिलना आपके वर्तमान कल्पना के वश की बात नहीं है। पुण्य के उदय में मिलता है, और विशिष्ट पुण्य का संबंध उस जीव के होता है, धर्म की दृष्टि रहती है, तो ये सुख भी धर्म के ही फल है। किंतु जो इन सुखों में गड़गप्प होकर गिरते हैं, वे धर्म की जड़ काटते हैं। घ्राण विषय की सुखाशक्ति का परिणाम, घ्राण इंद्रिय का विषय ले लो, इसमें भी कितनी मूढ़ता भरी हुई है। इत्र फुलेल फुआ सुगंधित कार्ड इन सब का उपयोग करना, इनसे ही जीव का लाभ क्या है? अरे सहज तो वातावरण में सौरभ है, वह मिल रहा है, ठीक है, पर बनावटी और जानबूझकर इत्र फुलेलों के लिए श्रम करना अथवा उपयोग लगाना, ऐसा तो कोई यहाँ बड़े पुरुष भी नहीं करते हैं। इत्र ने अत्तर अत्तर हाँ। छोटी प्रकृति वाले लोग इन गंधों के शोक में समय गुजारते हैं। इन्हीं समस्त सुखों में आसक्त होकर वर्तमान सुख भी नहीं पाते हैं, और भावी काल में भी सुख से वंचित रहने का यत्न करते हैं। नयन विष सुखा शक्ति का परिणाम, चक्षु इंद्रिय जन्य सुख कुछ सुहावने रूप इसे सुहा गए, सो उन रूपों के देखने में अपनी आंखों को कष्ट में डालते हैं, पलकों को तेज उठाकर बाहर में देखते रहने का यत्न करते हैं। सुहावना है क्या जगत में रूप? यह शरीर अशुचि धातुओं से भरा हुआ है। जिस शरीर से लोग प्रीति करते हैं, जिस शरीर के रूप को लोग टकटकी लगाकर देखते हैं और अनेक प्रयत्न करके जिस इंद्रिय जन्य सुख से अपना मन भरते हैं, वह रूप है क्या? इस शरीर में चाहे कोई कितना ही निरोग हो, परंतु ढाई तीन चार शेर मल हर समय पेट में पड़ा रहता है। पेट के अंदर क्या इंटेस्टाइन्स में सारा, इतना सारा ढेर सारा पड़ा है ना अंदर, यदि न पड़ा रहे, कम हो जाए तो उसकी मौत हो जाएगी। पेट में इतना 22 फुट वाला वो इंटेस्टाइन अंदर कुछ नहीं तो मर जाएगा ना। देखो ये अंदर कुछ नहीं रहेगा तो पेट के अंदर कुछ नहीं है। अभी खाना खाया, जो खाना खाया है वो पूरे इतने सारे उसमें से पास होते होते निकलने में कितना टाइम लगता है? मल भी होगा ना अंदर कुछ, ये तो साधारण सी बात। नहीं 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 नहीं, पानी के भी करते ना अपने मारे, एक एक मासो पवास वाले होते हैं, दो मास वाले, तो उसकी मौत हो जाएगी। यह मुख जो सारे शरीर में विशेष कामी जनों को प्रिय रहता है, जितना मल इस मुख में भरा है उतना मल तो हाथ पैरों में भी नहीं है। नाक थूक कफ लार खकार कीचड़ कनेऊ, ये क्या बात होती है, आदि कितने ही मल इस मुख में पड़े हुए हैं। जो मल से भरा हुआ शरीर है उसमें मोहिजन कामीजन आसक्त होते हैं। उनकी इस आसक्ति का यह फल होगा कि अब तो वह अपने धर्म की जड़ काट रहे हैं, स्वभावी काल में उनको आंखें तक भी न मिलेंगी। जैसे कोई कीड़े होते हैं जिनके आंखें भी नहीं है, उसका एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन इंद्रिय जीव में जन्म होगा जो इन आंखों का दुरुपयोग करेगा। कर्ण विषय सुखाशक्ति का परिणाम, कर्णेन्द्रिय का सुख, थोड़े राग भरे वचन सुन लिए, गीत संगीत सुहावनी चटक मटक की बातें सुन ली, इनमें ही लोग मस्त रहते हैं। कहीं गप्पे छिड़ जाए तो उन गप्पों में उसका समय बहुत मौज से कटता है, उस गप सभा को छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता है। यह सब कर्णेन्द्रिय का दुरुपयोग है। जो आसक्त होकर कर्णेन्द्रिय के विषयों में लगेगा वह धर्म बाग के वृक्ष को ही काट रहा है, फिर इस सुख फल को वह पाएगा कहाँ से? ये 5 इंद्रियों की बात हो गई। अब मन की उद्दंडताएं, मन का विषय तो बड़ा ही चंचल है। कितने ठौर है इस मन के ठहरने के, उन ठौरों में यश प्रतिष्ठा नाम की चाह, यह सबसे विकट ठौर है। छोटा बच्चा भी गोद में चढ़ा हो और उसे गोद से हटाकर नीचे रख दे तो वह रोने लगता है। वह भी यह महसूस करता है कि अभी मैं ऊंचे चढ़ा था, अब नीचे गिरा दिया गया हूँ, सो अपमान महसूस करता है, और की तो कहानी क्या है। वृद्ध अवस्था में भी लोग बड़ी चिड़चिड़ाहट उत्पन्न कर लेते हैं, वे भी पद पद पर अपना अपमान महसूस करते हैं। लड़के बड़े हो गए, उनका सब कार्य भी ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी जरा जरा सी बातों में अपना अपमान महसूस करते हैं। कहाँ तो अब उनके धर्म करने के दिन है और कहाँ व्यर्थ का रोष करके अपना जीवन गंवाए जा रहे हैं। वे वृद्ध पुरुष अपना अपमान महसूस करते हैं और दुखी होते हैं। जवानों को तो जगह जगह जरा जरा सी बातों में अपमान महसूस होने का ठिकाना मिल जाता है। किसी ने बात न मानी और तो जाने दो, कोई पहले राम राम ही न कर पाए, लो यह भी अपमान महसूस करने का कारण हो जाता है, इसने मुझे नमस्ते नहीं किया। ये देहाती लोग हमसे जुहार भी नहीं करते, जरा जरा सी बातों में अपना अपमान महसूस करते हैं। अरे तुम ही पहले नमस्ते कर लो। घर में स्त्री पुत्रों ने कहना नहीं माना, लो इससे अपना अपमान लिया मान लिया। अरे इतना भी सब्र नहीं है, ये बेचारे मुझे नाथ समझकर आश्रित रहते हैं, आज्ञा मानते हैं, इन पर कृपा रखे, परंतु कल्पना बनाकर अपमान महसूस करते। ये सारे अपने कल्पनाओं के ही खेल है कह रहे हैं। यह मन का विषय बहुत ही अड़विल्ला विषय है। जो इन विषयों में आसक्त हो जाते हैं वे अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। वे धर्म वृक्ष की जड़ को काट रहे। ये पांचों ही और छों की बात से ये बता रहे हैं कि धर्म वृक्ष की जड़ें काट रहे हैं। उनको यह मन भी न मिलेगा मरने के बाद, यह भी स्थिति हो सकती है। मन रहित असंगी जीव भी तो संसार में बहुत से हैं, इन्हीं योनियों में जन्म हो लेगा। धर्म वृक्ष रक्षण व सुख फल विधान, ये समस्त इंद्रिय के सुख धर्म रूपी उपवन के वृक्ष के फल है। हे सुखार्थी आत्मन, तू उन वृक्षों की रक्षा कर जिन वृक्षों से फल मिल रहे हैं। उन वृक्षों का पोषण चतुर नर किया ही करते हैं। जिस धर्म वृक्ष से वृक्ष के ये सांसारिक सुख है, तो उन वृक्षों की रक्षा कर और फिर इन सांसारिक सुख रूपी फलों को धीरे धीरे उतावली न करके लौकिक सुखों को अनासक्ति पूर्वक भोग। जैसे वृक्ष के फलों को एक एक करके धीरे धीरे वृक्ष रक्षक खाते हैं, लाठी मारकर उन फलों को गिरा नहीं देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, समय पर उन फलों को भूखते हैं और वृक्ष को खूब सुरक्षित रखते हैं, इसी प्रकार इन विषय सुख रूपी फल को तू न्यायपूर्वक बड़े विवेक सहित भोग। यानी उसमें आसक्ति मत करी कहना चाहिए, इनके भोगने में उतावली मत कर, अपनी बुद्धि ठिकाने रख, इस धर्म वृक्ष की रक्षा कर। जिन उपायों से इस धर्म वृक्ष की रक्षा बन सके उन बातों को कर। धर्म का अभ्युदय अभ्युदय ने उसका उत्कर्ष होना। हाँ भैया, धर्म तो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा के स्वरूप की दृष्टि में आलंबन में धर्म का पालन होता है। धर्म पालन का फल मोक्ष है, इंद्रिय सुख नहीं है। इंद्रिय सुख तो घुस की तरह है और मोक्ष सुख अन्न उत्पादन की तरह है। नहीं समझे? खेती करता है कोई किसान तो अनाज, वो धान पैदा करता है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है उसका? धान पैदा करना। तो उसके साथ वो घास फूस भी उग जाती है ना, वो अपने आप होती है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। तो जिसको ना बाय प्रोडक्ट है उसका, भूसे ने उसका बाकी जो घास फूस सब। अरे वही उदाहरण है, जैसे किसान लोग खेती करते हैं, वे यह नहीं सोचते कि मैं भूस पैदा करने के लिए गेहूं बोता हूँ। गेहूं तो बोते हैं अन्न उत्पन्न होने के लिए, भूस तो अनायास ही मिल जाता है। वो धान के बाद वो जो बाकी कुछ बच जाता है वो तो अपने आप मिल जाता है। उस अन्न उत्पादन के प्रयत्न में भूस का मिल जाना प्राकृतिक बात है, सहज है। ऐसे ही विवेकी पुरुष धर्म करता है तो मोक्ष के प्राप्ति के लिए शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में लीन होने के प्रयोजन से, पर इस उत्कृष्ट धर्म को करते हुए इस धर्मार्जन के प्रसंग में ये सांसारिक सुख मिल जाते हैं, यह तो सहज ही प्राकृतिक बात है। जो जीव वास्तविक पद्धति से धर्म करता हो, उसे जब तक संसार में रहना शेष है, क्या अनेक कुयोनियों में जन्म ले लेकर वह क्षण बिताएगा? वह तो बड़े महान सुख में अपना समय गुजारेगा और दृष्टि रखेगा इस शुद्ध धर्म की। यानी वो तो धर्म ही करना चाहता है, वो सुख नहीं चाहते हुए भी उसको मिल जाएंगे, ये कहना चाहिए। क्योंकि सारे वो समय दृष्टि हो जाता है मनुष्य, तो देव में चला जाएगा, देव से आएगा फिर मनुष्य में आएगा, और उसका जो समय दर्शन बना रहे तो उसको तो उच्च पदवी मिलेगी, राजा सेठी ऐसा कोई बन के यहाँ जन्म लेगा। जो मोक्ष के आनंद का कारण है, जो शुद्ध धर्म है मोक्ष के आनंद का कारण है। आत्महित का स्मरण। हम आप सब आत्मा हैं। आत्मा के नाते से आत्मा के हित की बात कर ले। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध श्रद्धान, और जैसे आत्मा का कल्याण हो तैसा अपना आचरण बना ले। यह आपकी निज की खुद की बात कही जा रही है। इसका संबंध समूह से नहीं है, जनता से नहीं है, धर्म मजहबों से नहीं है, जातियों से नहीं है। यह तो तेरे आत्मा की बात है और इस आत्मा के कल्याण से ही संबंध रखने की बात है। ये दुनिया को दिखाने के लिए इसमें से कुछ नहीं है। यह बड़ा दुर्लभ नरजन्म पाया है, इसे पाकर कोई अपूर्व काम कर लेना चाहिए। मैं आत्मा धर्म स्वरूप हूँ। जिसका जो स्वभाव है वह उसका धर्म होता है। मेरा धर्म ज्ञाता दृष्टा रहना है, ज्ञान का प्रकाश होना, ज्ञान का विकास होना, यही तेरा धर्म है। राग द्वेष पक्ष आदि अवगुण तेरे स्वरूप में नहीं है। तू इन अवगुणों को करता है तो अधर्म करता है। इन अवगुणों से हटकर एक शुद्ध ज्ञान रूप परिणमने का गुण बने, यही धर्म का पालन है। और हमने धर्म किसी क्रिया में मान रखा है, ऐसा क्रिया करेंगे तो हमने धर्म पाला है। धर्म के दृढ़ आश्रय का संकल्प। भैया कैसा भी संकट आए, कुछ भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, चाहे प्राण जाए, किंतु एक वास्तविक धर्म की दृष्टि को मत छोड़ो। अपने आप में अनादि अनंत बसे हुए धर्म में इस चैतन्य स्वभाव का आलंबन ही करो। इस प्रभुता के आलंबन से क्लेश होता ही नहीं। कदाचित पूर्वकृत कर्म के उदय में कोई क्लेश का भी प्रसंग आए तो उस प्रसंग में तू धर्म का और अधिक दृढ़ता से ग्रहण कर। यही तो परीक्षा का एक अवसर है। उसी समय यदि अनुत्तीर्ण हो गए तो बस दिशा बदल गई, नीचे गिरते जाने की दिशा में चले गए। इस धर्म को किसी भी परिस्थिति में मत छोड़ो और जिस जिस बात से धर्म करते बने करो। धर्मोपाय। धर्म के उपाय में प्रथम उपाय तो है वस्तु के स्वरूप का अध्ययन करना।
क्या फिर से समझाना?
धर्म के उपाय में, धर्म का उपाय करने को बोला तो क्या प्रथम उपाय है? वस्तु के स्वरूप का अध्ययन करना, यानी आगम से हमें उसको जाना। पदार्थ का क्या स्वरूप है, उसमें सहज शक्ति कैसी है, इसका अध्ययन करो। और अध्ययन से जो कुछ जाना है उसकी श्रद्धा करो और उसमें ही अपना उपयोग लगाते रहो। यानी जो हम सिद्धांत सीखते हैं, छह द्रव्य, उनकी परिणमन व्यवस्था, उत्पाद ध्रुव, तो उनमें जो अलग अलग गुण, सामान्य गुण है, विशेष गुण है, उसके बारे में जो बात है, तो उसमें अपना उपयोग लगाते रहे ना। तत्व विचार में अपना उपयोग लगा लो। यही है विश्वास, ज्ञान और आचरण। इस समीचीन विश्वास, ज्ञान, आचरण से अपने आत्मे की आत्मा की पुष्टि करें। संसार के क्लेशों को दूर कर ले, यह तेरे ही अधीन बात है। तेरा काम कोई दूसरा करने न आएगा। और अपने इस सही काम को त्याग कर अनावश्यक, भ्रमपूर्ण, काल्पनिक, परद्रव्य विषय कल्पनाएं की, राग द्वेष बढ़ाया, अपना सर्वस्व मलिन मोही जीवों को ही सौंपा, तो उससे कुछ तेरा भला नहीं होने का है। तू अपना सर्वस्व देव शास्त्र गुरु में समर्पण करे तो यह तेरे कल्याण का साधक है। सर्वस्व यानी कोई धन मन की बात नहीं, यहाँ पर पूरा उपयोग लगा ले उसमें। तेरा सर्व क्या है वो उसमें लगा ले। क्या है तुम्हारा सर्व? धन, तन, मन, वचन, ये कुछ भी हमारा नहीं है। तो जो हमारा है उनमें लगा लो ना, ये कह रहे
ज्ञानोपयोग,
ये सर्वस्व
अपना
ज्ञानोपयोग। तो उन्होंने बताए हुए मार्ग में लगाना, उस पर विचार करना, ये हमारे कल्याण का साधक है। रागी द्वेषी मोही मलिन जीवों को तो अपना सर्व बल दे रहा है, वह क्या साधक है? कर्तव्य का स्मरण। हाँ बोलो। मन भी पर है ना, पुद्गल है, तन भी पुद्गल, मन भी पुद्गल, वचन भी पुद्गल, धन भी पुद्गल, सारा पुद्गल है, और उसको हम अपना सर्वस्व मान रहे हैं। हाँ, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। कर्तव्य का स्मरण, हे आत्मन, तो यदि अनुपम विशिष्ट सुख चाहता है तो इन इंद्रियजन्य सुखों में आसक्त मत हो, धर्म की जड़ को हरा भरा बनाए रह, इससे ही तुझे समृद्धि प्राप्त होगी। धर्म से विमुख होकर तू कभी शांति न पा सकेगा। अतः राग द्वेष मोह पक्ष और इस विरोध बुद्धि को दूर करके एक शुद्ध निज ब्रह्म स्वरूप के परिचय में लग। ये निज की बात है, बाहर की अन्य की बात नहीं, अपने को पहचानने की बात। और इस आत्मत्व के नाते से तू गुप्त ही गुप्त अपने आप में अपना कल्याण कर ले। प्रभु स्वरूप तो आदर्श है, उसका चिंतन करके करना पड़ेगा तुझे ही सब कुछ। जैसे सूर्य तो मार्ग दिखा देता है पर चलना पड़ता है खुद को ही, तब इष्ट स्थान में पहुंचते हैं। यों ही गुरुजन प्रभु का उपदेश एक मार्ग दिखा देता है, उस मार्ग पर चलना तो तुझको ही पड़ेगा। सत्य श्रद्धा ज्ञान आचरण द्वारा धर्म की रक्षा कर और अपने जीवन को सफल कर। नया श्लोक हम कल ही शुरू करेंगे, अभी रुकेंगे यार। आज 19 नंबर का प्रवचन हुआ, कल 20 वाला होगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो,
16 नंबर का हुआ।